તારીખ 16/3/1994 શ્રી નિર્ભ્રાંત દર્શનની કેડી ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 66.
शंकर दोष है वो अपने अज्ञान के कारण से स्व पर भिन्नता नहीं जाने, स्वरूप की भिन्नता को अनुभव नहीं करता है, भिन्न होने पर भी भिन्न नहीं अनुभव करता है, इसलिए शंकर दोष होता है। शंकर दोष में मिलावट कर लेता है, मिलावट हो सकता नहीं है, कोई एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य कभी मिलता नहीं है, पात्रता भी नहीं है। वास्तव में तो पात्रता ही सही नहीं आई, एक दफे सच्ची पात्रता आ जाए तो आगे का रास्ता बहुत साफ है, पर वो भी इतनी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि पात्रता पैदा करने के लिए कोई प्रीकंडीशन नहीं है, सर्वसम्मत नहीं है उसका, ऐसा करो तो पात्रता हो, पहले ऐसा करो पात्र पढ़ो तो पात्रता हो, मंदिर जाओ तो पात्रता हो, दान दो तो पात्रता हो, यात्रा करो तो पात्रता हो, उपवास करो तो पात्रता हो, ऐसी कोई शर्त नहीं है, निर्णय संतों को स्वतंत्रता आने के बाद दूर होगा, इसके पहले दूर होगा नहीं। पात्रता की तो हमें विचार नहीं करना है, पर भेद ज्ञान सीधा ही हमें करना है। यही ज्ञान संकट दोस्तों को दूर होता है कि जब हम भेद ज्ञान का प्रयोग करें तब, लेकिन पात्रता का तो विचार ही नहीं करें और भेद ज्ञान करने कर पीछे हो जाए तो ये काम तो होने वाला है। इसलिए सबसे पहले हम एक निर्धार तो करें कि हमें हमारा जीवन बदल देना है पूरा का पूरा, और पूरी ताकत से, पूरे प्रयास से, पूरा प्रयत्न से, पूरे उद्यम से इसके पीछे लग जाना है। उतना ही करें तो पात्रता उसी वक्त पैदा होती है, पुरुष शरत के बिना उतना ही कर रहे हो, लेकिन इतना ही नहीं करते हैं तो हम तो हमारे आत्मकल्याण के विषय में प्रमाणिकता ही नहीं है। कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन हम हमारे आत्मकल्याण के विषय में प्रमाणिक नहीं होंगे तो हम दूसरी जगह हमारी प्रमाणिकता कैसे हो सकती है, या वो तो मानने वाले कहां से हो सकती है। तो यहां मान लिया कि पात्रता नहीं है, फिर भी कोई ऐसा पुण्य योग बनता है जिनको भटकते भटकते कि कभी सरोवरण में साक्षात भिक्षुंकर का योग मिलता है, तो कभी भावलिंगी संतों का योग मिलता है, कभी ज्ञानी पुरुषों का भी योग मिल जाता है। ऐसे प्रसंग में हम उसको पहचान नहीं कर सकते, ऐसे प्रतिबंधक पहचान करने में जो प्रतिबंधक है, ऐसे परिणाम में जब खड़े हैं तो उसको पहचान नहीं होती है। ठीक है, हाँ उसकी चर्चा करेंगे कि जब हमको ज्ञानी मिले, सत्पुरुष मिले, अभी तो भावलिंग के संत और तीर्थंकरों का तो कोई परिस्थिति नहीं दिखती है, तो सत्पुरुष मिलते हैं उनको भी क्यों नहीं पहचानते हैं? ऐसे कौन से हमारे अयोग्य परिणाम हैं कि जिससे हम पहचान नहीं कर सकते हैं? यानी हमारी बुद्धि तो काफी मात्रा में खुली हुई है, हम बुद्धिमान नहीं है ये बात तो नहीं है, क्योंकि हमारा उपजीवन तो बुद्धि से ही चलाते हैं। ऐसे तीन प्रकार के परिणाम हैं। सत्पुरुष मिलने पर भी इनके पहचान नहीं हुए, ऐसी अयोग्यता होने का प्रकार जो है वो तीन प्रकार के परिणाम होते हैं। इन तीन में से एक भी होता है तो जीव को सत्पुरुष प्रत्यक्ष होने पर भी इसकी पहचान नहीं होती। ये विषय दिया है गोपालु देव ने पत्रांक 416 में। 416 में वो कहते हैं कि जिसको उस पढ़कर के शास्त्र आदि या सुनकर के प्रवचन आदि मैं भी समझता हूं ऐसा अभिप्राय जान कर रहता है, वहां पर ये सतगुरु उसके वचन को अपनी योग्यता अनुसार तोलन करता है, तोलता है, अपनी दृष्टि से वो तोलता है, और कभी कभी उनको लगता है कि हम कुछ ठीक सोचते हैं, कहीं वो कभी वो जो ठीक सोचते हैं तो कभी हम भी सही सोचते हैं, ऐसा उनको लग जाता है। ये सबसे बड़ा प्रतिबंधक योग्यता वाला परिणाम है कि मैं समझता हूं। ठीक इस प्रसंग में आत्मा से को ऐसा भाव रहना चाहिए कि मैं कुछ समझता ही नहीं, અપૂર્વ જિજ્ઞાસા છે, સત્સંગ રહેના થઈ ગયા ઉપર ઉપર કી જિજ્ઞાસા છે કે નહીં, કોઈ અપૂર્વ જિજ્ઞાસા છે સત્સંગ મેં રહેને છે, સત્ય ગ્રહણ કરને કા વિચાર કી ભૂમિકા ને અવકાશ કા સ્વાદ અવકાશ मैं समझता हूं ये बड़ा प्रसन्न है और इस प्रसन्न है तो अंधकार को ले आता है और इससे आत्म कल्याण की दिशा सूझती ही नहीं है भीतर में। दूसरा जो अवरोधक परिणाम है पहचान नहीं होने देने में, यह वो है कि सत्पुरुष के प्रति जितना अनुराग होना चाहिए इससे कुछ अधिक मात्रा में परिवारों कुटुंब परिवार आदि के प्रति जिसको राग रहता है वो सत्पुरुष को पहचान नहीं पाएगा। ये दूसरा कारण दिया है। तीसरा कारण वो दिया है, ये तो राग के प्रधानता से बात दिया है, पहले ज्ञान के प्रधानता से बात दिया है, अब राग के प्रधानता से बात दिया है कि इस प्रकार का लाभ होता है। वहां तक संसार का पल्ला भारी है, इस संसार का पल्ला इतना भारी है वहां तक सबको उसके बाद जो है वो तो ग्रहण होने के लायक वो भी नहीं हो सकता। तीसरा कि किसी भी लोक संज्ञा से अपमान भय से अपकीर्ति भय से या हमारे दर्जे का सम्मान हमको नहीं मिलता है इसलिए या कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता को मुक्त करके सत्पुरुष का संग से वंचित रहना या सत्पुरुष का उपलब्ध होना है उपलब्धि है विद्यमानता है फिर भी उसकी उपेक्षा होना, संघ के विजय विषय में उदासीन होना, ये सब तो उसके पहचान में प्रतिबंधक परिणाम है। हम यहां जाएंगे कौन तो हमारे लिए ये चर्चा होगी, हमारा जो स्थान है वो लोगों की नजर में गिर जाएगा, कहीं नहीं कोई प्रकार का या हमको वहां उचित सम्मान नहीं मिलता है या हमको इधर अनुकूलता है इसलिए वहां अनुकूलता नहीं रहती है, ऐसे कई प्रकार के जो परिणाम है वो तो पहचान होने में बाधक कारण होते हैं। इसलिए जो सत्पुरुष के विरोध में है उसको चर्चा करने का स्थान नहीं है। हम कुछ सत्पुरुषों को माने और दूसरे का नाम भी आए तो हमको एलर्जी हो जाए, हम एक ही सत्पुरुष को हम मानते नहीं है। जब एक सत्पुरुष को नहीं मानते तो सभी को नहीं मानते, सभी को नहीं मानते तो निर्गत गुरु को और सत्य को मानते हैं, वो बात को करने लायक भी नहीं। ऐसे तीन प्रतिबंधक कारण है, ये तीन प्रकार में से एक भी प्रकार विद्यमान है उसको सत्पुरुष की पहचान नहीं है। जब पहचान नहीं होते तो मुमुक्षु की भूमिका का कोई भी आगे विकास हो सकता है ऐसा कोई बनने वाला नहीं है। इसलिए यहां पर वो बात बताई थी कि समागम होने पर भी पहचान न कर सके ऐसा बाधक परिणाम न वर्तता हो तो, वर्तता हो तो पहचान नहीं होगी, न वर्तता हो तो उस जीव की आत्मकल्याण की अभिलाषा सफल हो सकती है, वरना पहचान नहीं होने से आत्मकल्याण की अभिलाषा सफल हो सकती नहीं है। सजीवन मूर्ति है तो ज्ञान की प्रकट ज्योति है। जो प्रकट ज्योति को देख नहीं सकता तो अपने स्वभाव में रहा हुआ अव्यक्त है प्रकट ज्योति को देख पाएगा, ऐसा हम विचार भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। इसलिए उपादान की योग्यता बिना तो ऐसा दुर्लभ योग भी अयोग रूप साबित हो जाता है। योग नहीं मिला है ऐसी दिन की स्थिति है, वैसी स्थिति जिसको योग मिला, संयोग मिला वैसे उसकी रह जाती है। जो भी सब पुरुष ज्ञान के साथ सुख प्राप्त हुए हैं, वे पूर्व में पहले क्या थे कि पूर्व में मनुष्यता में यथार्थ का प्रवर्तन करते थे, उसकी पूर्व भूमिका क्या थी, यथार्थ मनुष्यता की थी। उस भूमिका में वो विकास करके अनुभूति पर्यंत पहुंचे। जब ज्ञानी हुए, अनुभूति हुई तब ज्ञानी हुए। इसमें जिस प्रकार से वे प्रवर्तित हुए उस प्रकार के प्रवर्तन का मनुष्य की भूमिका में आगे बढ़ करके जिस प्रकार से वो ज्ञानी हुए, उस रीति का, उस कार्य पद्धति का उन महात्माओं ने अनुभवपूर्ण विशद भाववाणी शैली में वर्णन किया है। आत्मार्थी जीव को ऐसे वचन स्वयं की भूमिका को स्पष्ट करने वाले हैं। जहां ऐसी बात चली है कि यथार्थ पुरुषता कैसे आती है, कैसे होती है, उसमें आगे बढ़ने का कैसे हो सकता है, ये बात अपने अनुभव से उन महात्माओं ने की और ये बात अपनी भूमिका को स्पष्ट करने वाली है। एकदम प्रयोजन रूप है, इसलिए प्रयोजन रूप दृष्टि से उसका विचार करना योग्य है। यहाँ पर इस विषय में कुछ बैंसरे के वचनामृत ग्रंथ के आधार से इस विषय को अनेक पहलुओं से निम्न प्रकार समझने का प्रयास किया गया है। इस छोटे से ग्रंथ में खास करके इस ग्रंथ का आधार इसलिए किया गया है कि इस ग्रंथ में मनुष्य की भूमिका को स्पष्ट करने वाली बहुत सी प्रयोजनभूत बात हमने अपने अनुभव से कही है। मनुष्य जीव के परिणाम में स्वरूप प्राप्ति की तीव्रतम भावना होती है। अपने स्वरूप प्राप्ति की ऊपर ऊपर की भावना होती है, वहां तक तो ये भावना यथार्थ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऊपर ऊपर की ऐसी भावना हमारा जीवन भूतकाल में अनंत बार की है, लेकिन इससे कोई काम होगा नहीं। तीव्रतम भावना अभी ही अभी पूरा पुरुषार्थ से हमें हमारा काम कर लेना है, शीघ्र शब्दार्थ लिया है, स्वग्रह का भ्रमण शीघ्रता से हो जाए, ये भावना का विषय है। साथ ही स्वरूप समझने की अपूर्व जिज्ञासा, भावना भावना के रूप में ले जाए उतना ही नहीं, जो स्वरूप समझे दिया पाया दुख अनंत, उस स्वरूप को समझने के लिए कोई अपूर्व जिज्ञासा। अपूर्व जिज्ञासा का क्या स्वरूप है, इसका एक अंतिम यहां पर वर्णन किया है। कि जिसको अनंत जन्म मरण से मुक्त होने की वेदना सहित जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या वेदना आनी चाहिए उसको? वेदना होती है तो इलाज होगा, वेदना नहीं होगी तो इलाज भी नहीं होगा। इसलिए ऐसी वेदना पसंद करने लायक है, चाहने लायक है। क्या वेदना अच्छी चीज होती है? क्या वेदना तो दुखदायक होती है, लेकिन ऐसी वेदना अंत में सुखदायक होती है, अनंत सुखदायक होती है ये वेदना। इसलिए जन्म मरण से मुक्त होने की जिज्ञासा भावना वेदना पूर्वक नहीं हो, नहीं हुई हो, वहां तक समझना चाहिए कि हमारी पात्रता में शुरुआत भी नहीं हुई है। पात्रता आई ही नहीं है, शुरुआत भी नहीं हुई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ऐसी उत्पन्न जिज्ञासा से पदार्थ का यथार्थ स्वरूप समझने का उनके ज्ञान में अवकाश होता है। ऐसी अपूर्व जिज्ञासा बिना स्वरूप के कहने वाले दर्शाने वाले शास्त्र भी पढ़ेंगे और ज्ञानी के प्रवचन भी सुनेंगे, लेकिन उसके समझ में कई योग्यता आएगी वही होगी नहीं। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ डालेंगे और सुन करके वैसे के वैसे रह जाएंगे, क्योंकि हमें वेदना आई नहीं। हमारे जन्म मरण से के जो दुख है, अनंत दुख पाए हैं हम लोग, लेकिन हमारे आत्मा को इससे छुड़ाने की हमें करुणा ही नहीं उत्पन्न हुई। ऐसे दुख की क्या परिभाषा? ये तो वेदना की चीज है, सुख दुख तो वेदन की चीज है। बहुत दुख हम भूलते भूलते इधर आए हैं, भले ही भूल गए हैं लेकिन दुख नहीं पाया है, नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है।
आकुलता ही है वो दुख,
अभी क्या है?
आकुलता है वो दुख,
होली सलगती है भीतर में, ये ठीक होना वो ठीक होना, इधर को ठीक करो उधर को ठीक करो, ये बराबर ये वो बराबर, फिर ये परिस्थिति है तो उसके टालने के लिए वेदना नहीं होगी। तो हमारे आत्मा को बचाने के लिए दुख से हमें ही करुणा नहीं आई है। जब ऐसी करुणा आती है उसको उपासदेव कहते हैं कि यही जीव तत्व आत्मस्वरूप समझने का अधिकारी है। कौन जीव समझने का अधिकारी है? ऐसा सीधा प्रश्न उठाया है कि जिसको अपने आत्मा को दुख से छुड़ाने की करुणा आई हो, यह जीव स्वरूप समझने का अधिकारी हो सकता है। इसके पहले कुछ भी कर ले समझने की योग्यता है ही नहीं, क्या समझेगा? अंतरंग से उत्पन्न ऐसी जिज्ञासा का यह एक विशेष प्रकार है। साथ साथ ही पूर्ण निर्दोषता की प्राप्ति अर्थात परिपूर्ण शुद्धि प्राप्त करने का ध्येय बनाने वाला और उस ध्येय को पूरी लगन से पूरे उद्यम से अनुसरण करने की लगन वाला जीव ही आत्मा की योग्य भूमिका वाला होता है। मोक्षार्थी हुए बिना कोई आत्मार्थी हो सकता? आत्मार्थी माने आत्महित करने का जिसका प्रयोजन है वह। आत्महित करने का प्रयोजन में कौन संलग्न होता है? एक उसको परिपूर्ण शुद्धि का ध्येय बना हो, यही हो सकता है। दूसरा तो ऊपर ऊपर से चलेगा, इसमें आत्महित होने वाला नहीं है। क्यों? कि उसको आत्महित करने की जो भावना है या प्रयास है, किस अनुपात में पैदा होगा? पूर्ण पद की अभिलाषा होगी तो उस अनुपात में होगा। अगर वो ध्येय नहीं है तो संसार के ध्येय में खड़े रह करके जो होना जैसे खड़ा है, ये भावना कहां से बलना होगी? हमारा संसार का ध्येय को छुटाई नहीं, मिटाई नहीं, और हम स्वरूप प्राप्ति की भावना रखे, चाहना रखे, और ध्येय तो हमारा संसार में आगे बढ़ने का है, ये भावना में कोई दम नहीं होता। इसलिए भावना सफल नहीं हुई है तो या नहीं होती है, यही कारण है इसके पीछे। जान पुष्कर नहीं भी होता हूं, लेकिन इस विषय की चर्चा निकलती है, पर चर्चा के दौरान यह भी समझ में आता है कि अपने अंतर को टटोलो, क्या हमें ईमानदारी से हमारा आत्मकल्याण करना है, तो पता चल जाता है कि नहीं नहीं हम तो अंतर से तो संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं, और साथ साथ ये भी हो जाए तो ठीक है, साइड बिजनेस में थोड़ी वो भी कमाई हो जाए तो ठीक है। संसार तो छोड़ना है ही नहीं, लेकिन साइड बिजनेस करते करते मंदिर आते जाते स्वाध्याय करते करते कुछ हो जाए तो अच्छा है, ऐसे कोई मुफ्त में मिलने वाली ये चीज नहीं है। तो वहां तो जब पता चल जाता है अपने के हमारे नियति ठीक नहीं है, तो फिर मायाचार अवश्य है, जान बूझ करके। अगर वहां तक ये बात जांच नहीं की हो तब तक अनजाने में भी जहर तो जान बूझ कर खाओ या भूल से खाओ, जहर खाने वाला मरेगा ही मरेगा। तो जब ये विषय हमारे सामने आया है तो उसको अच्छी तरह उसको हैंडल कर लेना चाहिए। ऐसी भूमिका वाला जिनको एकमात्र आत्महित का ही प्रयोजन रहता है, एक ही लक्ष्य रहता है हर कार्य में, उनको भी संसार के कार्य करने पड़ते हैं, करते भी है, यानी भी करते हैं तो मोक्ष तो करें ही करें, लेकिन उसका लक्ष्य है वो आत्म लक्ष्य को, आत्महित के लक्ष्य को छोड़े बिना ही सभी जगह प्रवर्तन करते हैं। इसके परिणाम का केंद्र स्थान बन गया कि जैसे कैसे भी मुझे छूटना ही है इस संसार से, ऐसे छूटने वाले को कोई संसार में मान सकता नहीं। और जिसको स्वयं बंध में पड़ना है, बंधाना है, उसको तीर्थंकर भी छुड़ा सकता नहीं, छूटने वाले को कोई बांध सकता नहीं, बंधने वाले को कोई छुड़ा सकता है। इसलिए जिसको आत्महित का ही एकमात्र प्रयोजन रहता है, ऐसे आत्मार्थी जीव का नित प्रयोजन के विषय में तीक्ष्ण और सूक्ष्म दृष्टि पैदा हो जाती है। जो भी अपने प्रयोजन की बात आएगी उस पर उसका ध्यान चला जाएगा, स्वाध्याय में तो अनेक प्रकार के बात, अनेक भूमिका के बात चलती रहती है, लेकिन हमारा प्रयोजन कहाँ है उस पर ध्यान नहीं जाता है। हम ऊपर से चले जाते हैं तो कभी प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है, आत्म हित नहीं होता है। और ये जो विषय है तो बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है। बाहर के दृष्टांत से कहने तो हीरा के व्यापार में बहुत सूक्ष्म नजर से ये व्यवसाय किया जाता है। हीरा का व्यवसाय सब्जी तरकारी की तरह ही होता है, बहुत बारीक नजर वाले का काम है। क्यों कि उसमें थोड़ी भी भूल हो गई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे भी ज्यादा सूक्ष्म दृष्टि का है आत्महित का प्रयोजन का व्यवसाय है। इतनी गंभीरता जहां तक हमको आर्थिक नहीं होगी वहां तक हमारा प्रयोजन की दृष्टि तीक्ष्ण और सूक्ष्म नहीं होगी। कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत दोनों विषय तो समझने की योग्यता सर्वक्षम ज्ञानी को भी होती है, अज्ञानी को भी होती है। विषय तो समझ सकता है, सर्वक्षम में उतना तो ताकत है, शक्ति है, लेकिन जिसका ध्यान नहीं जाता है कि मेरा प्रयोजन कहाँ है, जो ऊपर से बैठे विषय में चला जाता है तो काम क्या तक नहीं छूटता हो जाता। और जिसका ऐसा ज्ञान जाता है वो ज्ञानी हो जाता है, और ज्ञानी को तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए ज्ञान दिया इसलिए तुमको रस आता है, अप्रयोजन बुद्ध में भी रस आता है, ऐसा है। बाह्य रुचि जब होती है, पर रुचि होती है, तो बहुत कुछ जानने का लोभ होता है। ज्यादा शास्त्र पढ़ो, ज्यादा प्रवचन सुनो, ज्यादा चर्चा कर लो और ज्यादा जानकारी मुझे बजाए, ऐसा एक लोभ बना रहता है। उसमें मेरा प्रयोजन कहाँ है, अपना प्रयोजन कहाँ है, कुछ कुछ ध्यान रहता नहीं है। तो उसमें और टीवी देखने वाले में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि टीवी में भी तरह तरह के प्रोग्राम आज अलग अलग चैनल से मिलते हैं, अपने को बहुत जानकारी मिलती है, उसमें भी बहुत जानकारी मिलती है, उसमें भी बहुत जानकारी मिली, क्या अंतर रहा? दोनों में दोनों को आत्महित का प्रयोजन नहीं है, ये अशुभ है। टीवी वाला जो है वो अशुभ है, ये शुभ है, लेकिन जाते देर तो कुछ ये नहीं है। ये अशुभ है इसलिए हम टीवी नहीं देखते हैं, और ये शुभ है इसलिए शास्त्र पढ़ते हैं, इसलिए इससे तो अच्छे हैं। ये तो डूबने का बंदा है,
ये बात भी समय दृष्टि के लागू पड़ती है। अशुभ से शुभ में आना, अशुभ से बचने के लिए शुभ प्रवृत्ति रहती है, स्वामित्व नहीं रहता है, वो समय दृष्टि के लागू होता है। हमारे तो है का अशुद्ध मानना
सब एक ही है, एक ही जाति का है, लेकिन क्या है भजन चला जाता है कि हम लोग आज तक नहीं देखते, छूते भी नहीं, भले घर में है लड़के लोग देखते हैं लेकिन हम तो छूते भी नहीं, और टीवी चलाना भी नहीं जानते इसलिए तो। लेकिन शास्त्र को इतना पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन प्रयोजन भूत का क्या, प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत की खतावनी का क्या, कोई कहीं खतावनी चलती है, खताते हैं पढ़ते पढ़ते कि ये प्रयोजन भूत, ये अप्रयोजन भूत, ये मेरे काम की नहीं थी, ये मेरे काम के। तो जब ये दृष्टि नहीं होती है तब तक अप्रयोजन भूत पर रुचि होने के कारण से विवेक शून्यता आ जाती है। क्या कहते हैं उसको, उसको विवेक शून्यता है। यानी उसको कहते हैं कि ए विवेक का जीवन लागू हुआ है। विभिन्न दिशा का शब्द प्रयोग है अनुभव प्रकाश में कि पूर्ण रुचि से अविवेक ज्वर उत्पन्न हो जाता है और ज्वर आने से अशक्ति कमजोरी आई जाती है। चाहे कोई कितना भी बलवान हो लेकिन बुखार आने से कमजोर हो जाता, हाथी जैसा होता है ना, बुखार आने से बहुत कमजोर हो जाता है। ऐसा पूर्ण रुचि सेवन से अविवेक ज्वर होता है और आत्मशक्तिहीन होते हुए बहुत कमजोरी, अपना आत्मिक साधन में कमजोरी बढ़ जाती है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते कमजोरी बढ़ जाती है। देखो टीवी देखते देखते तो कमजोरी बढ़ ही जाए लेकिन शास्त्र पढ़ते पढ़ते बढ़ जाती है, ऐसी बात है। इसलिए इस विषय को बहुत गंभीरता से हाथ में लेना है। ऐसा शास्त्र पढ़ने ऐसा नहीं चलता है, इस मार्ग में तो ऐसा नहीं चलता है कि शास्त्र पढ़ते रहो। प्रयोजन दूर क्या बात है, मेरे अभी के प्रयोजन दूर क्या बात है, इसमें भी दो तीन वर्ग है। मैं वो लास्ट टाइम आया था जब नया मंदिर में भी प्रवचन चलता तो सुबह से मेरी बात चली थी, तो वो किस मान में कि प्रयोजन दूर में कहीं बात तो ऐसी है कि जो जानकारी के मुद्दे हैं फिर भी कुछ प्रयोजन के होते हैं लेकिन वर्तमान में उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। लेकिन हमारी गलत धारणा को समय सुधार लेना चाहिए। इस प्रकार का भी एक प्रयोजन है जो लॉन्ग टर्म में देखा जाता है। शॉर्ट टर्म में वो है कि अब भी मेरी योग्यता में प्रयोजन भूत वाली बात कौन से है, यह भी देखना चाहिए। तो उस प्रकार से जहां जहां जितना प्रयोजन हो वहां उतनी उतनी गहराई से इस विषय में अंदाज में जाने का, गहराई में जाने का प्रयास होना चाहिए। और यह प्रयोजन भूत बात को जानी अनजानी कर देना चाहिए, सुनी अनसुनी कर देना चाहिए, जैसे हमें पता ही नहीं हो। लोग पूछेंगे कि आपने शास्त्र पढ़ा तो फिर मिथ्यात्व के कितने भेद हैं, 24 तीर्थंकर का क्रम से नाम लियो, पहले कौन हुआ दूसरा कौन हुआ, कई बातें धारणा में तो लेते हैं, कोई तो प्रयोजन वाली बात नहीं है इसका। क्या
इससे साधे तो प्रयोजन जी, इससे भी प्रयोजन साधे तो प्रयोजन सकता है।
कुछ बातें ऐसी होती है कि हमें कुछ जरूरी नहीं है, उनको समझे तो भी ठीक, नहीं समझे तो ठीक, और अन्यथा समझे तो भी ठीक, उनके समझे तो भी ठीक। जैसे करुणा में जो के कई विषय है, हमारे वो विमल चंद जी थे और ये बहुत अभ्यासी थे, मुझे गिरने वाले और गोमर साहब उनका करना भी होता बहुत दिमाग चलता है। गोमर साहब भी पढ़ते थे और शास्त्र पढ़ते थे, ज्ञात शास्त्र भी उतना ही पढ़ते थे। उन्होंने बताया हमने तो इतना पढ़ा ही नहीं है, जितना हमने पढ़ा इतना हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन चर्चा बहुत करते थे हमारे से कि करणानुयोग के विषय में तो आचार्यों का भी मतभेद देखा जाता है। क्या कर्म प्रकृति के अनेक प्रकार के जो अवस्थाएं हैं, बद्ध अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, क्षायिक अवस्था, स्थिति की अवस्था, सत्ता में रहना, ये सब प्रकार के जो है उदय अवस्था, उसमें आचार्यों को भी मतभेद देखे जाते हैं। अब क्या करें, वो इसलिए चर्चा करते थे कि हमारा इस बात पर जोर था कि अनंत ज्ञानियों का तीनों काल में एक मत होता है, एक हो इसमें काल का कर्मानुष्ठान। यहां तो आचार्यों का मत भेद है, वो खुद ही लिखते हैं कि कुछ आचार्य ऐसे भी कहते हैं लेकिन हमको यहां ऐसा भाषित होता है। अब क्या करें, हमने बोला कि आपके प्रयोजन की बात है क्या, ये कर्म का जो विज्ञान है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान को केवल ज्ञान बिना सर्वस्व 12वें गुण स्थान तक को नहीं होता। ये 13वें गुण स्थान का अधिकार है ज्ञान का। अब ये केवल ज्ञान की परंपरा अनुसार हमारे आश्रम में जो बात आई उसमें कोई आचार्य के ऐसी धारणा हुई, कोई आचार्य के ऐसी धारणा हुई, प्रत्यक्ष तो दो में तो दो में से किसी को नहीं होता है। ये तो परोक्ष ज्ञान का विषय है, आगम प्रवास में मन में लायक है तो हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सही हो या गलत हो इससे आत्मा का कल्याण कल्याण का कोई प्रयोजन लगता नहीं। छोड़ो उसको, प्रयोजन बुद्ध की चर्चा करो ना। हम ये कहते थे कि प्रयोजन बुद्ध की चर्चा करो, फालतू समय और शक्ति की बर्बादी क्यों करना, ये तो परमुचि भावों का काम है। अप्रयोजन बुद्ध विषय में रस लेना, उलझना या उसके खींचा तानी करना ये परमुचि भावों का काम है। कहीं भी ऐसी बहस में जाना आत्मार्थ को नहीं चाहिए। इसलिए आत्मार्थी जीव का निज प्रयोजन के विषय में तीक्ष्ण और सूक्ष्म दृष्टि को सहज ही प्रवर्तन होता है। स्वरूप की अपूर्व जिज्ञासावश पूर्व में गणित और मानी हुई विपरीतता के प्रकार शिथिल होते हुए गौण हो जाते हैं। क्या फायदा होता है इससे कि हमारे जहां भी प्रयोजन भूत विषय में पूर्व गणित विपरीत मान्यता होगी वो ढीली हो जाएगी या उसका नाश हो जाएगा और तभी ज्ञान में सत्य समझने योग्य अवकाश होता है। ऐसे समय में इस भूमिका के काल में ये मुमुक्षु की प्राथमिक प्रारंभिक भूमिका है। ऐसे काल में भावना तत्व मुख्य रूप से कार्य करता है। कौन सा तत्व काम करता है प्रेरण में? भावना का तत्व। खास करके कुछ बैंसरी की चर्चा में ये बात बन आई है। आपको जानकारी ज्यादा हो कम हो अलग बात है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति की भावना, आत्महित की भावना कितनी गलत है ये बताओ। ये भावना प्रधान मार्ग है, प्रारंभ से ही इसमें भावना प्रधानता रही है। ये भावना ही पुरुषार्थ का उत्पादन होती है, भावना ही पुरुषार्थ की प्रयोजन होती है। मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ की योजना का मूल कहां है अगर इसको देखना है तो मोक्ष मार्ग को पुरुषार्थ प्रधान ही होता है। तो ये प्रधान पुरुषार्थ प्रधान ऐसा मोक्ष मार्ग का मूल कहां है? क्योंकि हम सबों की ये शिकायत है कि बात तो समझते हैं पुरुषार्थ नहीं चलता है, पुरुषार्थ की कमी है हमारे में, कमी नहीं है विपरीतता है। क्या बात समझते हैं लेकिन पुरुषार्थ नहीं चलता है तो मान लेते हैं कि कमी है, वास्तव में कमी नहीं है, पुरुषार्थ की विपरीतता है। पुरुषार्थ करते हैं उल्टा करते हैं, यही विपरीतता है। तो उसका सलटने का कौन सा उपाय है? ज्ञानी को तो हो गया लेकिन मुमुक्षु की भूमिका में कौन सा मुख्य प्रयोजन तत्व कौन सा है? ये स्वरूप प्राप्ति की भावना है। स्वरूप प्राप्ति की तीव्र भावना, भावना माने तीव्र भावना, ये मुमुक्षु जीव को कहीं भी नहीं अटकने देती, वरना कहीं में कहीं संतोष बुलाएगा। स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी लेकिन संतोष हो जाएगा। चलो आज 4-6 घंटा स्वाध्याय तो किया, आज का दिन फालतू का नहीं गया, 4-6 घंटे स्वाध्याय में तो जाता है। संतोष लेना यही बनना है। क्या कुछ तो किया, एक कुछ में अटक गया है, कुछ में अटका है तो वास्तव में तुच्छ में अटका है। किसमें अटका है? बहुत कुछ में अटका है। इसलिए पर्याय बुद्धि में संतोष लेना ये पर्याय बुद्धि यानी विख्यात को दृढ़ करने की एक प्रक्रिया है, दूसरा कुछ नहीं है।
भावना में शुद्ध आने के पहले जिसकी भावना कहनी है उसका परिचय तो है,
परिचय में उतना तो होना क्या है कि हमें दुख नहीं चाहिए, हमें आत्मिक सुख चाहिए। ज्यादा परिचय नहीं हो इस विषय का तो उतना तो कम से कम होना कि ये संसार के किसी भी प्रकार का दुख हमें नहीं चाहिए, यानी संसार में कहीं भी हमें सुख है ही नहीं। एक ऐसा निरापुरुष सुख के लिए हमें हमारे आत्मस्वरूप का अनुभव होना, प्राप्ति मैंने अनुभव होना कि हमें आवश्यक है। इसलिए इसकी जरूरत लगी तो जरूरत में से जो भावना और रुचि उत्पन्न हुई वो कहीं भी प्राप्ति हुए बिना अटकेगा नहीं। स्वरूप प्राप्ति की सही भावना वाला स्वरूप प्राप्ति हुए बिना नहीं रखे गए हैं। कितना भी सूक्ष्म बढ़ जाए, कितना भी प्रसाद मंद हो जाए, दो गुण का प्रवृत्ति मुख्य रहता है, एक ज्ञान का सूक्ष्म का, एक चारित्र का सूक्ष्म का। ज्ञान का सूक्ष्म बढ़ने से शास्त्र ज्ञान की जानकारी बढ़ जाती है, चारित्र का सूक्ष्म होने से प्रसाद की मंदता बढ़ती है। लेकिन हमें कहीं अटकना नहीं है, हमें तो हमारे अनुभूति ही चाहिए, यहां से हमारा कल्याण प्राप्त होता है। इसके पहले कुछ भी हो इसकी कोई गिनती नहीं होनी, गिनती होना वही अटकना है, वही संतोष है। ये संतोष का दूसरा रूप है।
भावना होने से पहले क्या चीज को माने भावना है
एक तो कहीं रहते जाने इसके भावना वाली की योग्यता बढ़ती जाएगी, उनको पता भी चलेगा कि योग्यता आगे से बढ़ी हुई है, फिर भी उसको संतोष तो होगा नहीं। संतोष होने के बजाय उल्टा उसको असंतोष हो जाएगा, यही इसका लक्षण है। कैसे भावना सही है इसका क्या सबूत है कि जिसको सही भावना नहीं होती उसको कहीं न कहीं संतोष आता है, और जिसको सही भावना होती है उसकी मुमुक्षु की योग्यता प्रतिदिन बढ़ती होते हुए भी उसको असंतोष बढ़ता है, संतोष कहीं नहीं आता है, यही इसका लक्षण है। तो चेक कर सकते हैं, बहुत बाकी है, थोड़ा नहीं बाकी है किंतु बहुत बाकी है, हमारा बहुत काम बाकी है। हमें कहीं भी रुकना पोसाता नहीं है, हमें कहीं भी हमारा समय बर्बाद करना पोसाता नहीं है, हमारी शक्ति को कहीं और जगह खर्च करना, अप्रयोजन दृश्य में खर्च करना हमको नहीं उठाएगा, ऐसे बात आएगी। उसी का नाम रुचि कहते हैं, भावना कहते हैं, तो दोनों साथ में रहते हैं। जिसको पोसाता है फालतू खर्चा करना शक्ति का और समय का, समझना चाहिए कि उसको भावना और रुचि नहीं है कुछ भी करता। अप्रयोजित रूप विषय में क्यों जाता है? हमारे जब चर्चा चलती थी पूजी सोगानी के साथ, काफी चर्चाएं चली हैं, कभी कभी मनुष्य आपस में चर्चा करने लग जाते थे, आपस में बातें करने लग जाते हैं, कोई किसी की कोई किसी की, तो आहिस्ते से एक बात रख लेते थे, ये क्या चल गया? चर्चा करते करते ये बात क्या चल गया, मैं तू या वहां ये क्या चलता है? पता है धर्मदासी शुल्लक में, मैं तू या वहां, मैंने ये फालतू की बात है, ये क्या चल रहा है? कोई अप्रयोजित गुरु का बात इनकी चर्चा में चल ही नहीं सकते थे, थोड़ी भी आए तो फटकारते थे, जोर से फटकारते थे, मन हो जाए बातें नहीं करें, ऐसे ढंग से चलता था। कोई भी विषय चल जाए, शास्त्र का चल जाए, ऐसे बात नहीं चले। हमारा प्रयोजन का विषय ही करना चाहिए शास्त्रों की बात, जो हमें हमारे दरजे की नहीं हो उसको जानते हैं। तो स्वतंत्र विचार का विचार कैसा होता है, एक प्रवृत्तक का विचार कैसा होता है, पौधों में तो क्या है, सबको ध्यान से लेना देना है। ये अनेक प्रकार के मुनिराज होते हैं, उसमें वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, नाम आते हैं ना शास्त्र में, तब तो सूत्र में बहुत आते हैं, कुला कैसे होते हैं, स्थवीर कल्प कैसे होते हैं, जिन कल्प कैसे होते हैं, कई प्रकार के आत्मा। हमारे मुझे कहा का ठिकाना ही कहाँ है, मुझे का स्वरूप समझो तो बस है। तो ये सब जो बातें हैं नहीं चलनी चाहिए, तो पोसाता क्यों है, बात तो वो है कि अपनी रुचि में इसका पोषण क्यों है, कि पर रुचि है जो अविवेक ज्वर को लाएगी और आत्मा को कमजोर बना देगी, अपने खाली अपना कार्य करने में वो सशक्त नहीं हो उनको लाइफ। तो ऐसी भावना मुक्षु जीव को कहीं भी नहीं अटकने देती। ऐसी तीव्र भावना के सद्भाव के कारण उस भावना से विरुद्ध भाव का निषेध आएगा ही आएगा। ये भावना एक हृदय की कोमल चीज है, भावना एक हृदय की बहुत कोमल चीज है, उसको कोई थोड़ा भी स्पष्ट करता है तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसके विरुद्ध थोड़ा भी जाता है भावना है निषेध कर देते हैं, नहीं 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 मुझे ये बात अखरती है या भावना को ठेस पहुंचती है, तो जिसको चलते चलते ठेस आए और पता न लगे ऐसा बंदा नहीं है, उसको पता लग जाता है ये मेरा टकने का स्थान है, छोड़ने का स्थान है, यहाँ मैं मेरी भावना के विरुद्ध जाती है, इस बात तो उसका निषेध करेगा, निषेध आएगा ही
आएगा। एक से बचना है, एक में लगना है, जीवन तो साथ साथ चलेगा।
जागृति भीतर में आनी ही चाहिए और ये जागृति भावना वाले को ही आती है, दूसरे को क्योंकि एक ऐसी चीज है कि उसके विरुद्ध कुछ भी परिणाम हमारे हो जाएंगे हमारी भावना को ठेस पहुंचेगा, तो पता चल जाएगा अरे ये क्या हो रहा है, जागृत हो जाएंगे। ऐसे शुरू से ही ये तीर ने का मार्ग है, तीर जाएंगे सारी कुछ उसको साइड में कर देंगे,
रुचि हमारी तरफ आ रही है, लेकिन गुरु दोस्त को जाने नहीं ये बात का तो निषेध नहीं,
सवाल पैदा नहीं होता, जाने बिना तो हे उपाधि का प्रश्न पैदा नहीं होता, नहीं पूर्वक ही हे उपाधि होता है, सीधा हे उपाधि के तो हो सकता है। निषेध वस्तुता हूं यहां तक, यहां तक निषेध वस्तुता है कि स्वानुभूति होने के पूर्व चाहे जैसे उच्च कोटि के शुभ परिणाम हो या योग्यता के अधिक उत्तम कोटि के योग्यता के परिणाम हो, तो भी अंतर में खटक रहा करते हैं कि वास्तव में जो स्वरूप मुझे अनुभव में आना चाहिए इसके सिवा मुझे और कुछ चाहिए, मेरा स्वरूप ही मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा ये कहेगा भी बहुत अच्छी योग्यता वाला ये है, उनको ऐसा लगेगा कि इससे क्या हो गया, किसी ने योग्यता अच्छी कही तो इससे क्या हो गया, मार्ग तो प्राप्त नहीं हुआ है, हमारे परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं हुआ है, इसके बिना चलेगा कैसे, इसके बिना जीवन चलेगा कैसे, तो वो कहीं अटकने वाला नहीं। चाहे जैसे परिणाम हुए हो, सुपरिणाम हो, योग्यता के परिणाम हो, तो उसे क्या ऐसे परिणाम है, फिर इसे क्या, ये तो गिनती करने लायक चीज है ही नहीं हमारे लिए। उक्त भावना के कारण किसी भी प्रकार के शुभ भाव पर या योग्यता पर वजन नहीं रहता। वजन रहता है तो अटकता है, वजन नहीं रहता है तो नहीं अटकेगा। अतः ऐसे शुभ भाव अटकने के स्थान नहीं बनते, वरना अटके बिना रहेगा भी नहीं। आपकी हमारे गुरु से आप अपनी खुश लेते हैं, अब पूजा करते हैं कि नहीं, पूजा में आते हैं कि नहीं आते हैं, पूजा नहीं आता क्या बात करते हैं। योग्यता के परिणाम भी एकत्रने के स्थान नहीं बनने चाहिए, तो ये मामूली शुभ भाव है, उस पर हमारा कितना बदल जाता है। बदल जाने से तो नुकसान ही नुकसान, कारण जैसे कुछ होके के शुभ भाव हमें हमारा आत्मा नहीं चाहिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। ये कोई बाहा करने वाले पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं कि कोई अपने ध्येय करते हैं, मतलब बीच में ऐसी परिस्थिति खड़े कर देते हैं कि जहां कोई दुभावनी चीज आ जाए तो आगे वो पहुंच सके नहीं। ये बात आ जाएगी, योग्यता भी बढ़ेगी तो राग भी आएगा, लेकिन हम चाहते हैं वो चीज हमें मिली नहीं है, तो हमें तो जो चाहिए वही चाहिए। हमारी नजर भी उस पर नहीं जाती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक ही लक्ष्य से, एक ही निष्ठा से प्रयास होना चाहिए, तभी काम होता है। आगे ऐसी भावना वाले को साथ साथ और भी कैसे कैसे परिणाम होते हैं और कैसे कैसे परिणाम नहीं होने चाहिए, इसकी चर्चा इस प्रकरण में आगे समझना।